नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली वर्तमान राज्य सरकार का तीसरा बजट आज। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट प्रस्तुत करेंगी। प्रदेश में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। डीप फेक सहित एआई से तैयार कंटेंट को लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर केंद्र सरकार की सख्ती। भ्रामक और फेक सामग्री 3 घंटे में हटानी होगी। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली वर्तमान राज्य सरकार का तीसरा बजट आज पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी सुबह 11 बजे विधानसभा में वर्ष 2026-2027 का बजट प्रस्तुत करेंगी। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने कल मुख्यमंत्री श्री शर्मा से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री के साथ वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया और अन्य उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछली बजट घोषणा के 75% काम धरातल पर उतारे हैं। विकसित राजस्थान एट 2047 के रोड मैप पर केंद्रित रहने वाले इस बजट में पूरे प्रदेश के लिए कई अहम ऐलान किए जाएंगे। बजट में कृषि, सिंचाई, सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी। शिक्षा को आधुनिक बनाने और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भी कौशल विकास के नए प्रावधान किए जा सकते हैं। नई भर्तियों, नए स्टेट एक्सप्रेस हाईवे और कृषि क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं होने की संभावना है। बजट को लेकर हर वर्ग में राहत की उम्मीद है। पाली के एक किसान ने आशा जताई कि सरकार सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध कराएगी।
अगलू राम बिश्नोई, पाली जिलो ट्यूबवेल रेवा से अनघोषित है, नीचो पानी है नहीं, तो हिमालय रो पानी जो पाकिस्तान जावतो हो, जगो सिंधु नदी रो पांचू नदी आवे अटीने मोड़ रिया है, दिल्ली तक तो जा रही है। अपने हमारे पाली जिले ने विशेष तर दर्जो देवनो चीज है, जगो सिंधु नदी रो पानी है वो हमारे पाली जिले में आवनो चीज है।
सिरोही के चार्टर्ड अकाउंटेंट त्रिलोक शर्मा को उम्मीद है कि बजट में स्थानीय उद्योगों और छोटे व्यापारियों को राहत देने के उपाय किए जाएंगे।
यदि व्यापार और उद्योग की स्थिरता को और प्रोत्साहन मिलता है तो उसका सीधा लाभ आम नागरिक तक पहुंचता है। एमएसएमई, छोटे व्यापारियों और स्थानीय उद्योगों को सशक्त किया जाए तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जब रोजगार बढ़ेगा तभी आय बढ़ेगी, और जब आय बढ़ेगी तभी परिवारों पर आर्थिक दबाव कम होगा। ऐसा बजट जो विकास के साथ साथ हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करे, वही वास्तव में समावेशी विकास की भावना को मजबूत करेगा। धन्यवाद।
वित्त मंत्री के बजट भाषण का आकाशवाणी जयपुर से सजीव प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण सुबह 10:57 से राजस्थान स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों पर उपलब्ध होगा। यदि बजट भाषण 1 बजे बाद भी जारी रहता है तो दोपहर 1 बजे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित होने वाला हिंदी का प्रादेशिक समाचार बुलेटिन बजट भाषण के तुरंत बाद प्रसारित किया जाएगा। इस बुलेटिन की अवधि 10 मिनट की होगी। इसके अलावा दोपहर 3 बजे राजस्थानी में 10 मिनट का विशेष बजट बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए जल्दी ही लाइव पोर्टल शुरू होगा। इस पोर्टल से अस्पतालों को जोड़ा जाएगा ताकि अंगदान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया पारदर्शी रहे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने कल जयपुर में हुई समीक्षा बैठक में इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये विषय जीवन रक्षा से जुड़ा है, ऐसे में प्रदेश में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाइन करने के साथ ही इसके निगरानी तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। श्रीमती राठौड़ ने कहा कि अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए मेडिकल कॉलेज से लेकर ट्रोमा सेंटर और सीएचसी तक स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री मामले को लेकर आज धान मंडी में होने वाली महापंचायत को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने कल सभा स्थल का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने महापंचायत को लेकर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।
मैं सभी क्षेत्रवासियों से, ग्रामीणों से, युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि जो मांग है, जो आंदोलन है, उसको संवैधानिक रूप से, शांतिपूर्ण रूप से आयोजित करें और हम अपनी बात रखें, तरीके से रखें। और जो भी सरकार में काम होता है वो एक प्रक्रिया के तहत होता है और सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह से संवेदनशील है, गंभीर है और इस दिशा में कमेटी जो गठित की गई थी वो नियमित स्तर पर बैठकें कर अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार को सौंपेगी, जिसके परिपेक्ष में आगे की कार्रवाई संपादित की जाएगी। तो मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि हम धैर्य बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने डीप फेक सहित एआई से तैयार कंटेंट को लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। इसके तहत एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को सक्षम अधिकारी या अदालतों की ओर से निर्देशित भ्रामक और फेक सामग्री को 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा निर्मित और आर्टिफिशियल सामग्री को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार नए नियम इस महीने की 20 तारीख से लागू होंगे। नए नियमों का पालन नहीं करने पर अब सिर्फ यूजर्स ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कल नई दिल्ली में इंडिया एआई प्रदर्शनी बस को रवाना किया। श्री प्रसाद ने कहा कि यह शुभारंभ ऐतिहासिक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की तैयारियों का हिस्सा है। ये सम्मेलन 16 फरवरी से भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर श्री प्रसाद ने कहा कि इस प्रदर्शनी बस का उद्देश्य युवाओं को एआई के उपयोग और फायदों के बारे में जागरूक कर डिजिटल विभाजन को कम करना है। प्रसाद ने कहा कि देश के युवा स्टार्टअप, शोधकर्ता और नव प्रवर्तक भारत को एआई के लिए एक वैश्विक सेवा प्रदाता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
ये डिजिटल डिवाइड और एआई के ऊपर ये जगह जगह जाएगी और खासतौर से हमारा युवा वर्ग जो है उनको बताएगी कि एआई में क्या कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्या इसके फायदे हैं। आने वाले समय में ये प्रयास किया जा रहा है कि ये एआई इम्पैक्ट समिट जहां विश्व के बहुत तमाम स्टेट हेड जा रहे हैं, बड़े बड़ी टेक कंपनीज के सीईओ और लीडर्स आ रहे हैं और खासतौर से हमारे स्टार्टअप। आने वाले समय में भारत जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वैसे एआई सर्विस प्रोवाइडर बनेगा।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस साल बोर्ड परीक्षाओं के लिए 19,90,000 से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षाओं का आयोजन प्रदेश भर में 6,194 केंद्रों पर किया जाएगा। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि नकल रहित पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस साल जिलों में अभय कमांड सेंटरों के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी।
प्रदेश के 6,194 केंद्रों पर आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। बोर्ड द्वारा नकल रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, उड़न दस्तों और विशेष दलों की नियुक्ति भी की गई है। इस बार सेकेंडरी परीक्षा में 10,68,109 और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 9,10,009, प्रवेशिका में 7,817 और वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में 4,122 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। नलमा दादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली वर्तमान राज्य सरकार का तीसरा बजट आज उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट प्रस्तुत करेंगी। प्रदेश में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। डीप फेक सहित एआई से तैयार कंटेंट को लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर केंद्र सरकार की सख्ती, भ्रामक और फेक सामग्री 3 घंटे में हटानी होगी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।